मलाखी अध्याय तीन। मसीह के अग्रदूत अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजने की प्रतिज्ञा। मलाखी अध्याय तीन पद एक से लेकर चार तक। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। ये भविष्यवाणी यीशु के पहले और दूसरे आगमन दोनों के बारे में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका अग्रदूत बनकर आया था। उसने मसीह के आगमन की घोषणा की थी। यूहन्ना अध्याय एक पद 27। मेरे बाद एक आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने योग्य नहीं हूं। उसने जब यीशु को देखा तब अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना अध्याय एक पद 29, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। उसने मसीह यीशु के आगमन की गवाही दी। परंतु हुआ ये कि यीशु को स्वीकार नहीं किया गया। वो मंदिर में आया, उसने मंदिर का शोधन किया, उसने मंदिर को अधर्मी व्यापारियों से मुक्त कराया। उसका परित्याग तो किया गया, परंतु वो पुनः आएगा और उसके आगमन से पूर्व एलिया आएगा कि वो मनुष्यों के मनों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करे। इसका एक भाग तो यीशु के पहली बार आने पर पूरा हो गया और दूसरा भाग यीशु के फिर आने पर पूरा होगा। मलाखी और दूसरे अन्य भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु के आगमन के दो पक्षों पर ध्यान नहीं दिया। पत्रस ने अपनी पत्री में इन लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने उन बातों के विषय में लिखा था जिन्हें वे स्वयं नहीं समझते थे, परंतु इन बातों को देखने और समझने की मनोकामना उनमें थी। परंतु वे वास्तव में अपनी हर भविष्यवाणियों में उपस्थित दो अर्थ वरन समय अनुसार असंगत अर्थों को स्वयं नहीं समझ पाए। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यीशु राजा के रूप में दाऊद के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा और सदाकाल का राज्य स्थापित करेगा, और दूसरी ओर वे ये भी भविष्यवाणी करते थे। यशाया अध्याय 53 पद 3, वो तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। दानियल ने भी यही भविष्यवाणी की। दानियल अध्याय 9 पद 26, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, अर्थात उसे राज्य प्राप्त ना होगा। उनके मुख से परमेश्वर का वचन तो निकलता था, परंतु वे स्वयं ही कुछ नहीं समझते थे। यही कारण है कि उनके शब्दों में कभी कभी विरोधाभास दिखाई देता है। उन्होंने केवल आत्मा की अगुवाई में ये सब लिखा था। वह उनके मन में ये विचार डालता था, यद्यपि वे स्वयं नहीं समझते थे क्या लिख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मलाखी अध्याय 3:5, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। निस्संदेह ये मसीह के दूसरे आगमन का संकेत है। वो जगत का न्याय करने आएगा। उसके आगमन के बाद उसका सबसे पहला काम होगा पृथ्वी के समस्त जातियों को एकत्रित करके उनका न्याय करे। मलाखी अध्याय 3:5 में आगे लिखा है, और टोनों और व्यभिचारियों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। टोनों के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द का अर्थ है औषधि। वे लोग नशे की औषधियों का प्रयोग करके परमेश्वर का भ्रमित दर्शन करने का प्रयास करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि साधु लोग चिलम में गांजा पीते हैं। मलाखी अध्याय 3:5 के आगे के भाग में लिखा है, और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, जैसे याकूब लिखता है कि हे धनवानों, अपने आने वाले कष्टों के लिए रो और विलाप करो, तुमने मजदूर की मजदूरी को रोका है ताकि तुम भोग विलास में लगे रहो, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना पाएंगे। परमेश्वर उनके बारे में कहता है कि वे अलग किए जाएंगे, वे जो मजदूरों की मजदूरी रोकते हैं। मलाखी अध्याय 3:5-6 में, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। याकूब को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल थी, नहीं तो परमेश्वर अब तक उनका नाश कर चुका होता, क्योंकि उसने याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि एक भोर के सितारे का उदय होगा, इसलिए वे अब तक सुरक्षित थे, अन्यथा परमेश्वर उन्हें नष्ट कर चुका होता। मैं प्रभु परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं, इसे ही सिद्धांत रूप में कहा जाता है, परमेश्वर बदलता नहीं। नए नियम में यीशु के लिए लिखा गया है, वो कल आज और युगानयुग एक सा है, अर्थात वो बदलता नहीं। ये परमेश्वर का एक दिव्य गुण है, अपरिवर्तनीयता। मलाखी अध्याय 3:7, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? परमेश्वर ने उन्हें एक और अवसर प्रदान किया, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परंतु वे नहीं माने। वे पूछते थे, हम क्यों फिरे? वे ढीठ और हठी लोग थे। अब ये एक प्रश्न है। मलाखी अध्याय 3:8, परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। और परमेश्वर कहता है, दशमांश और उठाने की भेंटों में, हर आमदनी का दसवां भाग परमेश्वर का है, उसे ना देना परमेश्वर को लूटना है। व्यवस्था में परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। मलाखी अध्याय 3:9, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। जब नहमिया दूसरी बार लौटा तो मंदिर की आराधना बंद हो गई थी, क्योंकि लोगों ने दशमांश देना और भेंट चढ़ाना बंद कर दिया था। याजकों ने उपासना का काम त्याग कर खेतों में मजदूरी करना आरंभ कर दिया था कि वे जीवित रह पाए। इस प्रकार नहमिया के लौटने पर मंदिर में आराधना नहीं हो रही थी। नहमिया ने इसराइलियों को एकत्रित करके उन्हें झिड़का कि उनकी लापरवाही के कारण याजकों को खेती करके परिवार पालना पड़ रहा है, क्योंकि वे दशमांश और भेंट नहीं ला रहे थे। यहां हम फिर से देखते हैं कि नहमिया की पुस्तक मलाखी की पुस्तक की पृष्ठभूमि है। परमेश्वर अपने लूटे जाने की चर्चा करता है, वह उन्हें आज्ञा देता है। मलाखी अध्याय 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि धर्मशास्त्र में केवल यही पर परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनौती दी है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हम प्रायः दशमांश के विषय को स्वीकार नहीं करते कि ये नए नियम की विधि नहीं है, ये पुराने नियम की अनिवार्य विधि है, ये कलीसिया से संबंधित नहीं है। नए नियम में एक स्थान पर यीशु ने दशमांश देने की प्रथा को स्वीकार किया है। यीशु फरीसियों के आडंबर के विषय में कह रहा था कि वे अपने मसालों का दशमांश देते थे, उदाहरण सौंफ के दानों तक को गिनकर उनका दसवां भाग निकालते थे, परंतु निष्पक्षता और ईमानदारी का उन्होंने त्याग किया हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि उन्हें ऐसा तो करना ही था, परंतु अन्य अनिवार्यताओं को भी साथ साथ पूरा करना उनके लिए आवश्यक था। मैं दशमांश देने को अनिवार्यता के रूप में प्रचार नहीं करता हूं कि ये एक नियम है। मैंने अनेक बार परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में प्रचार किया है और कहा है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, और जो आशीषें परमेश्वर हमें देता है वे अनुग्रह की वाचा में व्यवस्था पालन का परिणाम नहीं है, जैसे हमारी सत्यनिष्ठ भक्ति, दशमांश के प्रति हमारी विश्वास योग्यता आदि। एक समय वो था जब मनुष्य व्यवस्था के माध्यम से संबंध बनाता था। आज परमेश्वर ने ये उचित जाना कि मनुष्य प्रेम में होकर उसे संबंध बनाए। आज परमेश्वर व्यवस्था के प्रति निष्ठा के कारण हमें आशीष नहीं देता है। हमारे आशीषों का कारण है परमेश्वर का अनुग्रह। अतः मेरी सारी आशीषों का अर्थ ये नहीं कि मैंने उनका उपार्जन किया है या मैं इस योग्य हूं कि उन आशीषों को पाऊं, परंतु केवल इसलिए कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके लिए परमेश्वर का अत्यंत आभारी हूं। परमेश्वर मुझसे इतना अधिक प्रेम रखता है कि वो मुझे देना चाहता है। अतः ये मेरे लिए मूर्खता नहीं होगी कि कहूं, हे प्रभु ऐसा मत कर, तू बहुत अच्छा है प्रभु। मैं प्रायः ये तो कहता हूं तू बहुत अच्छा है, परंतु ये नहीं कहता मत दे। मैं परमेश्वर की भलाई को सराहता हूं, मैं परमेश्वर को उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं उसके साथ प्रेम में होकर संबंध बना सकता हूं, ना कि व्यवस्था के द्वारा। मैं उन लोगों के लिए दुखी होता हूं जो परमेश्वर के साथ वैधानिक संबंध तक ही सीमित रहते हैं। ओह, मैं परमेश्वर का कैसा धन्यवाद करता हूं कि उसके साथ मेरा संबंध प्रेम का है। मैं उससे प्रेम रखता हूं, वो मुझसे प्रेम रखता है, और ये एक साफ सुथरा सौदा है, क्योंकि वो मुझसे मेरे प्रेम की तुलना में अधिक प्रेम करता है। वो अपने प्रेम का प्रदर्शन भी करता है कि वो मुझसे कितना प्रेम रखता है। अधिकांश समय वो मुझ पर अपने प्रेम का प्रदर्शन ठीक उस समय करता है जब मैं बुरी तरह से चूक जाता हूं, जिससे कि मैं निराश न हो जाऊं। वो अपने अनुग्रह में कहता है, मैं तेरी रचना जानता हूं, मैं जानता हूं कि तू मिट्टी है, परंतु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं और मैं यही प्रेम तुझे दिखाना चाहता हूं। परमेश्वर इस प्रेम से मुझे निरंतर भर देता है। तथापि दान करने में परमेश्वर का एक नियम है। यदि मैं इस ईश्वरीय नियम को, जिसे परमेश्वर ने प्रकृति में निहित किया, नहीं समझता, तो मैं पास्टर के रूप में निंदा का कारण हूं। इस नियम को नया नियम इन शब्दों में व्यक्त करता है, लूका अध्याय 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये यीशु मसीह द्वारा दिया गया आत्मिक नियम है कि जितना अधिक दोगे उतना अधिक पाओगे। प्रेरित पौलुस ने कहा, दूसरा कोरिंथियों अध्याय 9:6, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये एक दिव्य आध्यात्मिक नियम है। हम इस सौर मंडल को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को भली भांति जानते हैं। यद्यपि हम उन नियमों को समझते नहीं, हम उन नियमों के अनुरूप आचरण करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझते, परंतु ये निश्चय ही जानते हैं कि सेब नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। हम इसके अनुरूप आचरण करते हैं और इस नियम का पालन करते हैं। हमने अपने विज्ञान के विकास और तकनीकी द्वारा वायु गतिकी के नियमों को सीखा है, जिसके द्वारा हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विपरीत चल सकते हैं। हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, परंतु आधार रूप में हम सब गुरुत्वाकर्षण के नियमों का सम्मान करते हैं। हम 10 मंजिल इमारत से ये कहते हुए नहीं कूदते, मैं गुरुत्वाकर्षण के नियमों की चिंता नहीं करता हूं, मैं नहीं समझ पाता कि वे कैसे काम करते हैं और मैं उनमें विश्वास नहीं करता। हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ऐसी चुनौती दें। अब देखिए विद्युत का नियम, घनात्मक कण प्रतिकर्षित करते हैं, इसी प्रकार ऋणात्मक कण भी। हम चुंबक के ध्रुवों के बारे में जानते हैं कि विपरीत ध्रुव परस्पर आकर्षित होते हैं, तो भी यदि हम विद्युत के बारे में समझना चाहे तो समझ नहीं पाएंगे, परंतु हम निश्चय ही उसके नियमों को सिखाते हैं और उसे अपनी सेवा में काम में लाते हैं। हम इन सब नियमों के साथ जीवन बिताना सीख चुके हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। इसी प्रकार संसार में आत्मिक नियम भी है, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए स्थापित किया है कि आप उनका पूरा पूरा लाभ उठा सके। ये नियम अपने कारणों और परिणामों में वैसे ही प्रभावी है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम या प्रकृति का कोई अन्य नियम जिसके साथ हमने जीवन निर्वाह करना सीखा है। ऐसा ही एक आत्मिक नियम है परमेश्वर को देने का, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप जितना अधिक परमेश्वर को देंगे प्रतिफल में, उससे उतना ही अधिक प्राप्त भी करेंगे। ये एक आधारभूत आत्मिक नियम है। आप कहेंगे, ये कैसे काम करता है? मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि ये काम करता है। यही एक क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्यों को चुनौती दी कि वे उसको परख कर देखें। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर आशीषों की वर्षा करता हूं या नहीं, तुम्हारे पास उनके लिए जगह भी नहीं होगी। क्या आप परमेश्वर की इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस करेंगे? परमेश्वर को परख कर देखो, परमेश्वर कहता है। मलाखी अध्याय 3:11-13 तक, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ठिढाई की बातें कही है, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है? परमेश्वर ने अब भी उनसे कहा कि उनके काम ठीक नहीं। उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, कब, क्यों, कहां, कैसे? यहोवा ये कहता है, तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, परंतु मैं कहता हूं कि प्रयास करके भले बनने से कोई लाभ नहीं। मलाखी अध्याय 3:14, तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? परमेश्वर कोई प्रतिफल नहीं देता है, वो उत्तर नहीं देता है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने कुछ भी तो नहीं किया है। प्रभु की सेवा का कोई लाभ नहीं। शैतान कितनी बार हम पर ऐसा जाल डालता है, वास्तव में कभी प्रतिफल नहीं, मेरी भलाई का क्या लाभ? देखिए, उन्होंने मुझसे नाजायज फायदा उठाया है। परमेश्वर की सेवा करने से कोई लाभ नहीं। मलाखी अध्याय 3:15, अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। अब यहां चुनावों में वोट देने का प्रश्न आता है। प्रत्याशी के चरित्र पर ध्यान दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे सरकारी कार्यालयों में अनेक विश्वासी जन हैं। मेरे विचार में प्रत्येक मसीह विश्वासी का ये कर्तव्य है कि वो चुनाव में प्रत्याशियों की आत्मिकता के विषय गहराई से जाने। मैं सोचता हूं कि ये हमारा दायित्व है कि हम सरकार के प्रति शिकायत नहीं कर सकते। यदि हम मतदान नहीं करते और अपने प्रत्याशी का यत्न से निर्धारण नहीं करते, मैं आपको किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत डालने पर बाध्य नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करना ये अवैधानिक है। परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रत्याशी को पहचाने। मलाखी अध्याय 3:16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना अधर्म से घृणा करना है या उससे दूर हो जाना है। परमेश्वर का भय कोई बीमारी का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मनुष्य को मृत्यु से बचाने की सावधानी नहीं, परंतु परमेश्वर का भय एक पवित्र श्रद्धा है जो हमारे मन में उस समय होती है जब हम उसकी महानता, महिमा, प्रताप, सामर्थ के सामने खड़े होते हैं। हम इस विशाल जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महानता का विचार करते हैं। हम परमेश्वर की बुद्धि पर विचार करते हैं, जिसने अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की, और हम उस महानता और सामर्थ और बुद्धि के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो जाते हैं। यही परमेश्वर का भय है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। सदा प्रभु के विषय में चर्चा करना, क्या ये महिमामय नहीं है कि उन लोगों के साथ रहे जो सदा प्रभु के विषय में ही चर्चा करते रहते हैं। आप जब भी उनके साथ होते हैं, वार्तालाप का विषय यही होता है, ओ प्रभु कैसा भला है, ओ मैं बताता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया है, मैं बताता हूं कि आज प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। प्रभु के ही नाम में लीन वे परस्पर बातें करते रहते हैं। जब वे प्रभु के बारे में बातें करते हैं तब मलाकी अध्याय 3:16 में आगे लिखा है, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। परमेश्वर उसके विषय किए जाने वाले प्रत्येक वार्तालाप को चुपके से सुनता है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जब आप उसके बारे में बातें करते हैं। अंग्रेजी का एक बड़ा मन भावन गाना है जिसका अर्थ है, आओ हम यीशु की बाबत सुनाएं जो राजाओं का राजा है, मार्ग सत्य और जीवन ऐसा है प्रभु हमारा। प्रभु के अतिरिक्त और कोई अच्छा वार्तालाप का विषय हो सकता है क्या? क्या ये रोचक नहीं जो संसार कहता है? यदि आप वार्तालाप आरंभ करना चाहते हैं तो मौसम के विषय बात आरंभ करें, जैसे आज क्या सूरज नहीं निकला? मुझे तो शक है कि वो निकलेगा या नहीं, परंतु मौसम तो एक बदलने वाली परिस्थिति है। क्या ये दुख की बात नहीं कि मनुष्य के पास मौसम से हटकर बात करने का और कोई विषय है ही नहीं? लोगों का अपना अपना मनपसंद विषय होता है। यदि आप उस विषय पर चर्चा नहीं करते तो वे मूक बने रहते हैं। उनका विषय आते ही वे जीवंत हो जाते हैं कि अब ज्ञान प्रदर्शन का समय आ गया है, परंतु परमेश्वर का विषय आते ही उन्हें सांप सूख जाता है। क्यों? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। मलाखी अध्याय 3:16 का अंतिम भाग, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते हैं उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक किताब लिखी जाती थी। इब्रानी संस्कृति में नामों का अर्थ महत्वपूर्ण होता था। वे अपनी संतान के लिए कोई भी नाम चुनकर नहीं रख देते थे, वे वही नाम चुनते थे जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अर्थ तो सबके नामों का होता है, परंतु आपके माता पिता ने अर्थ पर आधारित नाम आपको नहीं दिया। वे अधिकतर किसी न किसी के पीछे, जिसे वे बहुत सराते हैं, आपको भी नाम दे देते थे, अच्छा हो या बुरा। कभी ऐसा भी होता है कि हमने अपने बच्चे को कोई नाम दिया, जब वो स्कूल गया तो पता चला कि वहां उसी नाम का एक और बच्चा है जो जड़मती है। ऐसी स्थिति में हमारा बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम ऐसे बच्चे से जुड़े, अतः हम उसका नाम बदलना चाहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि हम नाम के अर्थ के महत्व को आगे रखते हुए नाम नहीं चुनते हैं। किसी का नाम करोड़ी मल हो सकता है, परंतु वास्तव में वो एक दरिद्र जन होता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारी संस्कृति में नाम किसी व्यक्ति विशेष के गुण एवं चरित्र से संबंधित नहीं होता, परंतु उस संस्कृति में नामों का महत्व था। प्रभु का नाम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। भजन संहिता और नीति वचन में आप नामों के महत्व को देखते हैं। प्रभु का नाम महान है। उसके नाम के निमित्त मनुष्य को श्रद्धा और पवित्र भय रखना आवश्यक था। ये इब्रानी की क्रिया है, अर्थात वो काम का होना दर्शाता है, अर्थात परमेश्वर ने अपना स्वभाव अपने नाम से व्यक्त किया। उसने अपने नाम में अपनी मनोकामना व्यक्त की कि वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप आपका परमेश्वर बनना चाहता है। इस प्रकार वो आपका यहोवा राफा है, अर्थात चंगा करने वाला, यहोवा शालोम अर्थात वो आपकी शांति है, यहोवा इरे अर्थात प्रबंधक है, यहोवा सितकेनु राज्य के युग में यीशु का नाम होगा अर्थात वो हमारी धार्मिकता बन गया है। तब यीशु का नाम यहोशुआ नहीं होगा, निश्चय ही वो विश्वासियों की धार्मिकता बन गया है। परमेश्वर का नाम या वह नीति वचन के अनुसार, नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। क्या आपने अपने संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में शरण ली है? ओ यीशु, प्रभु यीशु, आप संकट काल में तुरंत यीशु के नाम की शरण लेते हैं और आपको उसके नाम में संजीवन, सुरक्षा, संतावना और विश्वास का आभास अवश्य हुआ होगा। वे सब जो उसके नाम का स्मरण करते हैं और उसके नाम में शरण लेते हैं, उनके नाम परमेश्वर के सामने एक किताब में लिखे जाते हैं। ये किताब जीवन की पुस्तक है। मलाखी 3:17, परमेश्वर कहता है, वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। जब मैं पढ़ता हूं और पाता हूं कि परमेश्वर मेरे विषय में ऐसे अपने पन से बात करता है, तो मैं अत्यधिक आनंद से भर जाता हूं। मेरे पुत्र, मेरी संतान, मेरे दास आदि, मैं उसकी संपदा हूं, मैं उसका निज भाग हूं। परमेश्वर ने कहा, वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मलाखी 3:17 में आगे लिखा है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। आप उसकी संपदा है, पत्रस ने कहा, क्योंकि हम उसकी विशेष संपदा है। परमेश्वर आपके विषय में कहता है कि आप भूमि में छिपाए हुए धन के सदृश है। आपको प्राप्त करने के लिए उसने पूरा खेत ही खरीद लिया। पौलुस ने इफिसियों को पत्र लिखते समय ये प्रार्थना की कि परमेश्वर उनकी समझ को खोल दे, जिससे कि वे जान ले कि पवित्र जनों में उसकी धरोहर क्या है। उसने और एक स्थान पर कहा, मैं कैसे चाहता हूं कि तुम जानते हो कि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए क्या सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के राज्य की महिमा का धन, वो प्रार्थना करता है कि आप उसकी धरोहर के धन को समझ ले। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप समझ पाए कि परमेश्वर की दृष्टि में आपका मूल्य क्या है। हमारा स्वभाव ये है कि हम स्वयं को नीचे गिराते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, ओ मैं कितना परेशान हूं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें अनमोल, नगीना मानता है। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल नहीं होते, तो वो अपने इकलौते पुत्र को आपकी मुक्ति और पाप मोचन के लिए क्यों भेजता? केवल इसलिए कि आपको वो कहे, मेरे पुत्र, आज ऐसा ही है, क्योंकि मसीह ने जगत की मुक्ति के लिए कीमत चुका दी कि आप बचाए जाओ। सेनाओं का यहोवा कहता है, मैंने जो दिन ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग होंगे। मलाखी 3:17 के अंत में लिखा है, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे।